आदरणीय देवियों एवं सज्जनों, शानाशाह की कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 132वां संस्करण सुनाने जा रहा हूँ। कहानी में पति पत्नी के व्यक्तिगत जीवन पर प्रकाश डाला जा रहा है। आगे बात 1980 की दशक की है। उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली शहर में एक युवक रुद्रनाथ ने आयुर्वेद में ग्रेजुएशन करके अथक प्रयास एवं ज्ञान के बल पर बरेली में ही किसी सरकारी विद्यालय में वैद्य के पद पर चयन हो गया। ड्यूटी सुबह 8 बजे से 1 बजे तथा शाम 4:30 से 6:30 बजे तक का था। बहुत मेहनत से अपना कार्य वैद्य के रूप में लगनपूर्वक कर रही थी। 2 वर्ष के उपरांत शहर से ही उनका विवाह भी संपन्न हो गया। पत्नी जयंती बड़ी खुशी सुशील व सुसंस्कारवान थी। भगवान के आशीर्वाद से एक पुत्र भी हुआ। परिवार का विस्तार एवं औषधालय के आसपास कोई उचित दामों की दवाई की दुकान न होने के कारण वैद्य रुद्रनाथ ने वहीं एक मेडिकल स्टोर खोलना तय किया, जिसमें आयुर्वेद के अलावा एलोपैथी, होम्योपैथी मेडिसिन व सभी उपकरण भी उचित दाम पर बेचने को उपलब्ध कराई गई। दुकान पर एक विश्वसनीय लड़के को बिठा दिया गया तथा औषधालय से ड्यूटी समाप्ति पर वैद्य जी भी दुकान पर बैठने लगे, जहां मरीजों को फ्री कंसल्टेशन देते थे। वैद्य जी के व्यवहार एवं ज्ञान के कारण आसपास के इलाके में अपने इलाज बाबत मशहूर हो गए। एक बार जुलाई के महीने में सावन पर उनकी ससुराल से फ़ोन आया कि बेटी जयंती को कुछ दिनों के लिए पीरियड छोड़ जाएं तथा आप भी रिवाज के अनुसार बूरा खाने को मित्रों सहित पधारें। वैद्य जी ने पत्नी से सलाह ली तो पत्नी ने कहा कि मैं आपके साथ ही पीर जाना चाहती हूँ तथा आपको ही लेवाने भी आना चाहिए। वैद्य जी ने रविवार का दिन निश्चय कर लोकल ससुराल होने से सपर बार पहुँच गए। उसी दिन शाम को डिनर के उपरांत घर लौट आए। सारे दिन औषधालय, बाद में मेडिकल स्टोर 10 बजे बंद कर भोजनालय पर डिनर ले घर आ सो जाते, यही उनका दैनिक नित्यक्रम था। वैद्य के कुछ चंचल प्रवृत्ति के मित्रों को जब ज्ञात हुआ कि परिवार सावन के उपलक्ष में लंबे प्रवास पर गया हुआ है, अतः वैद्य की सहायता के बहाने रात 10 बजे मित्र भी उनके साथ साथ घर आने लगे। घर पर ही सबका खाना बनता था, फिर बियर, बाद में धीरे धीरे शराब का दौर भी चलने लगा। लगभग 1 माह बाद भी जब वैद्य जी की ओर से पत्नी को बुलाने का कोई उपक्रम नहीं हुआ तो पत्नी जयंती का फ़ोन आया कि आप शीघ्र मुझे लेवाने आ जाओ। वैद्य जी के पूछने पर पत्नी ने कहा कि इन दिनों मैंने अपनी माँ से लड़ाई कर ली है, फिर भाई से भी लड़ी, बाद में भाभी से भी खूब लड़ाई कर चुकी हूँ, लेकिन जो मज़ा आपसे लड़ने में आता है वह अन्य किसी के साथ नहीं आता है, इसलिए आपसे लड़ने की बहुत मन कर रहा है। कृपया आगामी रविवार को मुझे वायदे के अनुसार लेने आ जाओ। आगामी रविवार को पत्नी के सुझाव के अनुसार वैद्य रुद्रनाथ ससुराल से परिवार को लेकर आ गई। घर आकर पत्नी ने देखा कि पूरा घर शमशान जैसा बना रखा है, चारों ओर शराब एवं बियर की खाली बोतलें बिखरी पड़ी हैं। रात्रि 10 बजे बाद जब वैद्य जी दुकान बंद करके आए तो एक शराब की बोतल भी साथ थी। एक सप्ताह तक उनके शराब पीने की आदत से परेशान पत्नी ने पारिवारिक चिकित्सक से फ़ोन पर परामर्श कर वैद्य जी को लेकर चिकित्सीय राय एवं उपचार हेतु उनके क्लिनिक पर पहुंची। चिकित्सक ने पत्नी को बाहर बिठा वैद्य जी से पूछा कि आप शराब पीते हो क्या? तब प्रत्युत्तर में वैद्य जी बोले कि हाँ मंगा लीजिए। चिकित्सक ने कहा कि मेरा मतलब यह है कि आप एक साथ कितने पैग लेती हैं और दिन भर में कितनी बार शराब सेवन करती हैं। वैद्य जी के प्रत्युत्तर में कहा कि दिन भर में केवल एक बार शराब का सेवन करता हूँ, वो भी रात्रि 10 बजे के बाद 4 पैग लेकर खाना खाकर सो जाता हूँ, यही मेरी दिनचर्या है। चिकित्सक ने राय दी कि अब आप 4 पैग की बजाय 3 पैग लेना प्रारंभ करें और एक सप्ताह बाद मुझे मिलें। वैद्य जी एक सप्ताह बाद अकेले ही चिकित्सक महोदय की सलाह पर अपना पर्चा लेकर पहुंच गए। चिकित्सक से बात में बतलाया कि 4 पैग के बदले आपकी राय के अनुसार नियमित 3 पैग ही लेना प्रारंभ कर दिया है। पूरा सप्ताह बीत गया। चिकित्सक बहुत खुश हुआ तथा बोले कि अब आप मेरी राय अनुसार 3 पैग के बजाय सप्ताह में नियमित 2 पैग ही लेना तथा आगे अगले रविवार को पुनः आकर संपर्क करें। वैद्य जी चिकित्सक के पास उनकी सलाह के अनुसार अगले रविवार को पर्चा सहित पहुंच गए तथा चिकित्सक को बताया कि पूरे सप्ताह नियमित 2 पैग ही लिए। यह सुनकर चिकित्सक बहुत खुश हुआ, बोला 4 पैग से 2 पैग पर आ गए, ये तो बहुत अच्छे लक्षण हैं। अब आप आगामी सप्ताह नियमित केवल एक ही पैग लेना प्लीज़। ईश्वर ने चाहा तो आप बहुत जल्दी शराब की आदत से तलांजलि दे देंगे। वैद्य जी ने चिकित्सक महोदय को बताया कि 1 पैग तो मैं पूरी बोतल पीना तो मेरे लिए असंभव है, आप कुछ और तरीका निकालें। वैद्य जी की बात सुनकर चिकित्सक आश्चर्य से उन्हें देखने लगा तथा बोला कि क्या मतलब आपका? तब वैद्य जी बोले कि अब तक आपकी सलाह के अनुसार पूरी बोतल 4 पैग की बजाय 3 पैग पीने लगा था, फिर आपकी राय पर 2 पैग में पूरी बोतल पीता था। वैद्य जी की बात ने सुन पारिवारिक चिकित्सक ने उनकी पत्नी को फ़ोन द्वारा सूचित किया कि इनका इलाज केवल नशाबंदी केंद्र पर ही संभव है, कृपया उन्हें वहाँ ही एडमिट करा देवें। परिस्थितियों के अनुकूल न होने से पत्नी ने पति को पड़ोसियों की सलाह पर अन्य विकल्प देखने प्रारंभ किए। एक दिन एक महान संत के यहाँ वैद्य जी को लेकर पहुँची तथा अपनी समस्या बतलाई। संत ने कहा कि बेटी इनका इलाज हमारे पास है, आपको जिन्होंने रिकमेंड करके भेजा है उनके कारण आपसे ज़्यादा खर्चा तो नहीं करा सकता, आप मात्र 33 करोड़ हिंदू देवी देवताओं के नाम से केवल एक एक पैसा दान कर दें बस, फिर देखे चमत्कार। पत्नी जयंती ने मनी मन गणना की तो ज्ञात हुआ कि यह तो 33 लाख का खर्चा करवाना चाहता है। अतः जयंती ने बहुत ही विनम्रतापूर्वक संत से कहा कि आपके सुझाव अनुसार मैं तैयार हूँ, आप एक एक देवी देवताओं का नाम बोलते जाएं, मैं एक एक पैसा रखती जाऊंगी। जयंती की बात सुन संत संत रह गए, मुस्कुराकर बोले ठीक है तो कल मेरे फोन करने पर ही आप यहाँ अनुष्ठान हेतु पधारना। वैद्य जी यद्यपि कठोर अनुशासन प्रिय थे, नौकरी के समय दुकान पर भी एवं दुकान पर भी वे शराब सेवन रात्रि 10 बजे तक नहीं करते थे, लेकिन रात्रि 10 बजे बाद वह कुछ लाचार हो शराब पीना बंद नहीं कर पाई। एक दिन 20 वर्ष की नौकरी के उपरांत स्वास्थ्य के कारण बदला सेवानिवृत्त हो गए। पीएफ से अच्छी रकम मिली थी जिसको बैंक में जॉइंट अकाउंट खुलवा कर जमा कर दिया तथा पत्नी को बताया कि बैंक से ओटीपी नंबर दिया गया है जिसे गुप्त रखना है, किसी की हालत में किसी को भी मत बतलाना। पत्नी को इस बाबत अच्छी तरह समझा दिया था। एक दिन मोबाइल को चार्ज करने हेतु घर पर ही छोड़ बैजी बाजार किसी कार से गए हुए थे। लगभग 3 घंटे के बाद घर वापस आए तो पत्नी से पूछा कि कोई फ़ोन तो नहीं आया था। पत्नी ने कहा कि बैंक से आया था, पूछ रहे थे आप कौन बोल रही हो। जवाब में मैंने बताया कि वैद्य जी की पत्नी बोल रही हूँ। पूछा कि अपना ओटीपी नंबर बदला में हमें कुछ रकम आपके अकाउंट में जमा करनी है, तो हमने उनको अपना ओटीपी नंबर बदला दिया। इसके जवाब में वो बहुत नाराज होते हुए बोले देखकर सही सही बदलाएं। हमने पुनः कहा कि देखकर ही बोले हैं, तब उधर से गाली देता हुआ फ़ोन काट दिया। वैद्य जी ने घबरा कर ऑनलाइन अपने अकाउंट ये कहते हुए चेक किया कि आज तो हम तुम्हारे कारण लूटी गए हैं, लेकिन अकाउंट में जब सभी सही सलामत मिला तो वैद्य जी बोले कि कमाल है, आपने उन्हें अपने ओटीपी में क्या बतलाया था। तो पत्नी दबक से बोली कि आपने बताया कि हमारा जॉइंट अकाउंट है, तो मैंने अपना आधा अकाउंट 3226 बदला दिया। दोनों का पूरा ओटीपी तो 6452 था ना। वैद्य जी ने महसूस किया कि पत्नी की श्रद्धा के कारण आज अकाउंट खाली होने से बच गया। धन्यवाद रहो। पुनः संज्ञान में आया कि पहली बात जीवन की सारी दौड़ केवल अतिरिक्त के लिए है, अतिरिक्त पैसा, अतिरिक्त पहचान, अतिरिक्त शोहरत, अतिरिक्त प्रतिष्ठा। यदि यह अतिरिक्त पाने की लालसा न हो तो जीवन एकदम सरल है। दूसरा सुझाव, कुछ शब्द प्रयोग से निःशब्द हो जाना कई गुना बेहतर है। एक दिन वैद्य जी ने बेटे से कहा कि नज़र कमज़ोर होने के कारण मेरे दुकान पर आना नियमित नहीं हो सकता, अतः तुमने BSc कर लिया है, अब तुम स्वतंत्र रूप से दुकान संभाल सकते हो, लेकिन मेरी 2 सुझाव हैं जो तुम्हें मानने होंगे। पहली बात तो काउंटर के पास भगवान श्री कृष्ण की फ़ोटो को नित्य साफ कर अगरबत्ती जलानी होगी, तथा दूसरी बात यह है कि जब भी कोई समस्या उत्पन्न हो तो लोगों से कहने की अपेक्षा केवल करुण आवाज में इस तस्वीर में निहित भगवान को ही बोलना है बस। वैद्य जी का बेटा तरुण कुमार स्वतंत्र रूप से मेडिकल स्टोर चलाने लगा तथा वैद्य जी घर पर ही विश्राम करने लगे। एक दिन शहर की लाइट गई हुई थी, तेज बरसात भी हो रही थी। अचानक दुकान पर एक 12 वर्षीय बालक आया तथा दवा का पर्चा दिखाकर मोबाइल के प्रकाश में पर्चा अनुसार दवा निकाल कर काउंटर पर रख दिया तथा पैसे लेने लगा। बालक दवा लेकर भागता हुआ चला गया। जैसे ही लाइट आई तो तरुण कुमार ने देखा कि बालक अपनी दवा छोड़कर काउंटर पर रखी दूसरी दवा चूहे मारने की ले जा चुका है। यह देख तरुण कुमार एकदम घबरा गया कि इससे तो बालक की माँ मर जाएगी, यह क्या हुआ, सुबह पुलिस पकड़ कर जेल में बंद कर देगी, लाइसेंस रद्द होगा। सो अलग अचानक तरुण कुमार को पिता द्वारा दी गई दूसरी सलाह याद आ गई। यद्यपि वह पूर्ण रूप में भगवान को नहीं मानता था, सब ढकूसता समझता था, लेकिन मुसीबत से छुटकारा हेतु कोई उपाय न होने से भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर के सामने अश्रुपूर्ण नेत्रों से करव्रत प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, इस मुसीबत से मुक्त करो, बालक की माँ को मरने से बचा लो। दूसरे ही क्षण क्या देखता है, वह बालक भागते हुए आया और कहा, भैया भैया, मेरी दवाई कीचड़ होने के कारण पैर स्लिप हो फैल गई है, कृपया दूसरी दवाई उपलब्ध करा दें, बहुत मेहरबानी होगी। बालक को पुनः दुकान पर देख तरुण कुमार ने भगवान को विश्वास के साथ दिल से धन्यवाद दिया तथा लपक कर बालक को निःशुल्क दवा उपलब्ध कराई। भाइयों, भूल होना प्रगति है, मान लेना संस्कृति है, सुधार लेना प्रगति है। कठिनाइयों से घबराइए नहीं, उन्हें पीछे छोड़िए, विजेता बनिए, खुद का विकास करिए और अपने उस वास्तविकता का निर्माण करिए जिसका आप स्वयं करना चाहते हैं। भाइयों, मेरी कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट्स दें, लाइक व सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।